भगवद गीता के आठवें अध्याय पाठ करेंगे। पहले इस अध्याय के महात्म्य भगवान शिव कहते हैं, देवी अब आठवें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में आमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है, वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था जिसने बेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वो मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराना, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रहता था। वो बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था, उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वो पापात्मा काल वश पड़ गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीवल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्र के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमती था। वो बड़े खोटे विचार की थी। वो ब्राह्मण विद्वान होने पर भी वो अत्यंत लोभवश अपने स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों का दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का ये महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस जोनी से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी। तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है। ये सुनकर पत्नी ने पूछा, किं तद् ब्रह्म किमाध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है। उसकी पत्नी के इतना कहते ही आश्चर्य की घटना घटित हुई। उसको सुनी उपर्युक्त वाक्य गीता के आठवें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से ही वो वृक्ष उस समय तार के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वो पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। इनके मुख से दैवत ही आठवें अध्याय का आध श्लोक निकल पड़ा था। तद अनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आढ़ूरा होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का ये सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण बाब भाव शर्मा ने आदर आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वो मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं को भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, आ नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खरे क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के आठवें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूं। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वो फल देने के मैं उत्कंठित हूं। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आध्यात्मिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, ये आठवें अध्याय का महात्मा थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। हिंदी यहां कौन नहीं समझते हैं? अच्छा, तो आमी जे पूछी किसी बुझते बच्चे ना तुमरा, और हु कैनॉट अंडरस्टैंड दिस इन एंड वांट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, कल के थे के किसी इंग्लिश कॉपी रखे दियो गीता महात्मा प्रिंट ये थे, आमके बोलो आमी देखिए दो। अच्छा, और गीता सबके पास है? गीता पाठ करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता अष्टम अध्याय, अष्टम अध्याय का प्रभुपाद जी का अष्टम अध्याय का प्रभुपाद जी का गीता का ये है भगवद गीता एज इट इज का भगवत प्राप्ति, अष्टम अध्याय का वर्णन ऐसे हुआ है। अष्टम अध्याय भगवत प्राप्ति। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय आठ भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या हैं, कृपा करके ये सब मुझे बताइए। तो चार विषय का प्रश्न है, पांच विषय का प्रश्न है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। तो जानने की जरूरत है, समझने का, तो ध्यान से सुनो। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देवधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आधिभूत कहलाती है, अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर आधिज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतवैव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत तथा नित्य रूप से नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्नास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वो विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को जोग की स्थिति जोग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु के सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस योगाभास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाते हैं। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होकर हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। हाँ, ध्यान लगाकर सुनिए। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जितने सारे जीव है सबको मृत्यु हो जाता है, और सब मृत्यु के पश्चात अचेतन हो जाते हैं। जैसे मृत्यु के पश्चात जो स्थिति है वो कैसी है? नींद जैसे है, सो जाते हैं सब। और ब्रह्मा का दिन जब शुरू होता है तो फिर सब जाग उठता है, मतलब तब सब शरीर प्राप्त होकर इस भौतिक जगत में सक्रिय होता है। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। ये परा या श्रेष्ठ और कभी इस प्रकृति का कभी नाश न होने वाली है, ये प्रकृति कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। ये नाश, भौतिक जगत का नाश भी तरह तरह का होता है। जैसे एक एक युग चार युग हैं, युग के अंत के समय भी एक प्रकार का नाश होता है। अच्छा, पहला नाश तो एक एक आदमी का नाश होता है, मृत्यु है एक एक व्यक्ति का नाश, हमारा नाश हो जाता है मृत्यु के समय। उसके पश्चात फिर हमारा जीवन का शुरू होता है कोई एक नया शरीर में, और ऐसे चार युग हैं। ये युग का अंत में भी एक प्रकार का नाश होता है, मतलब तब जगत का नाश होता है और इसके पश्चात ब्रह्मा के एक दिन में चतुर्दश मनु का 14 मनु का आगमन होता है। तो एक एक मनु का जो स्थितिश काल जिसे मन्वंतर कहा जाता है वो मन्वंतर के बाद भी एक प्रकार का लय होता है, नाश होता है। अच्छा, इसके पश्चात ब्रह्मा का दिन जब खत्म हो जाता है तो और एक प्रकार का नाश होता है। अच्छा, ऐसे हर ब्रह्मा का हर दिन में एक एक बार नाश हो जाता है। उस नाश का स्थिति कितना रहता है, ब्रह्मा का एक दिन का स्थिति कितनी कितनी है, हाँ, सहस्र युग, 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग का मतलब क्या है, 43 crores, 4.3 million years। और उसको मल्टीप्लाई करो 1000 से तो क्या होगा, 4.32 billion years। एक बिलियन का मतलब क्या है, एक मिलियन होता है, एक मिलियन ना 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, एक मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, तो 400 करोड़ और 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा का एक दिन। और जब लय होता है तो ब्रह्मा का रात्रि का भी उतना ही स्थिति है, 4.3 billion ईयर, अनदर 432 करोड़ वर्ष हम सो जाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा का दिन के बाद एक प्रलय होता है, इसके पश्चात ब्रह्मा का जब जीवन खत्म हो जाता है, ब्रह्मा का आयुष्काल कितनी है, ब्रह्मा का आयुष्काल है ब्रह्मा का 100 साल। तो मतलब ब्रह्मा का एक दिन का विचार हम किया तो ऐसे दिन के अनुसार महीना, साल और 100 साल है ब्रह्मा का जीवन। तो ब्रह्मा का जब जीवन का अंत होता है तब ये ब्रह्मांड सारे खत्म हो जाता है, सारे ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है, तो ब्रह्मांड नहीं रहता है इस ब्रह्मांड। तो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं कारण समुद्र में, केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं, 100 करोड़ अंतहीन अगणित ब्रह्मांड है। तो ये सारे ब्रह्मांड कब खत्म हो जाता है, जब भगवान इस भौतिक जगत से अपना दृष्टि निकल लेते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत की ओर देखते हैं तो भौतिक जगत प्रकाश होता है, और जब श्री महाविष्णु जब भौतिक जगत से अपना दृष्टि संवरण कर लेते हैं तो बस सारे जगत नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। जैसे भूत्या भूत्या प्रलीयते, बहुत सारे प्रकार के प्रलय होता है, मतलब प्रकाश और प्रलय, प्रकाश और नाश। कभी प्रकट होता है ये जगत, जैसे हमारे लिए ये जगत कितना तक प्रकट रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेंगे, और जब तक जिंदा भी नहीं, जब हम सो जाते हैं जगत ये जगत प्रकट रहता है, जब तक हम जागते हैं तब तक ही हम इस जगत को उपलब्धि होता है। बल्कि इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है जिसका ना तो कभी विनाश होता है ना तो कभी सृष्टि होता है। और वहां अगर चले जाओगे तो वहां से वापस नहीं आना पड़ेगा, तो वहां से जाना ही बुद्धिमान का विचार है, वहां चले जाना ही कर्तव्य होता है, होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। ये परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भारत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन छह मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में जा या सूर्य के दक्षिणायन रहने के छह महीने में दिवंगत होता है, वो चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी में चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवद गीता के आठवें अध्याय का भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। तो समझने में पूरा समझ गए हो या समझने में कुछ असुविधा हुआ है? किसको असुविधा हुआ है? समझ शायद पूर्ण रूप से समझ नहीं हुआ है, बल्कि क्या करना चाहिए, आप खुद पाठ करना चाहिए, है ना? ना कि एक बार बस हुआ, बस वही काफी है। घर में जाकर पढ़ोगे, जो पाठ हो रहा है घर में पढ़ते हो सब, हाँ पढ़ना चाहिए, इसका ही अभ्यास कहा जाता है। ऐसे एक बार पढ़ने से या एक बार सुनने से समझना कठिन है। एक बार सुनने से समझना, एक बार पढ़ने से समझना कठिन है, केवल सुनने से समझना और भी कठिन होता है। और जब मन और कहीं रहता है तब समझना और भी कठिन हो जाता है। तो ध्यान लगाकर इस तत्व को समझने का कोशिश करना चाहिए। भगवान का अर्जुन का प्रश्न क्या था इस श्लोक का शुरू शुरू में? यस श्याम प्यारी, और लास्ट में देवता है। अच्छा ठीक, हाँ, और भौतिक जगत क्या है? आत्मा के तुम एक बार ये बताया वो सही नहीं था। तुम बोला परमात्मा क्या? परमात्मा नहीं, आत्मा क्या? ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक जगत क्या है? और देवता क्या है? इसके पश्चात भी और एक प्रश्न था अगले श्लोक में। यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते? तो 5 और 3 8 प्रश्न था, 8 प्रश्न था। तो 5 तो हम सबको याद है, 5 फिर से ओके नेक्स्ट वेरी गुड देन वेरी गुड वेरी गुड देवता क्या है, उसके बाद यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहते हैं, और जो भक्ति के साथ अंत का प्रश्न क्या था लास्ट कौन किसको याद है? और तुम बताओ मृत्यु के समय भगवान को कैसे प्राप्त हो सकते हैं, जो भक्त हैं वो कैसे भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते? वेरी गुड। तो 8 प्रश्न अर्जुन ने किया, तो इसका जवाब भगवान दिया कैसे दिया है? भगवान बताया अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म अविनाश, जो अविनाशी जीव है और जो दिव्य है वो मतलब जो ये शरीर को शरीर में चेतना प्रदान करने वाला जो आत्मा है वो आत्मा ही ब्रह्म है, और उसका नित्य स्वभाव, उसका जो नित्य स्वभाव है उसे ही आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। आत्मा ही है ब्रह्मा और आत्मा का स्वभाव है आध्यात्म। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या वो उस जो कार्य करते हैं जीव इस भौतिक शरीर के द्वारा उसे कर्म कहा जाता है या सकाम कर्म। सॉरी निरंतर परिवर्तनशील इस भौतिक प्रकृति को जगत कहा जाता है, भौतिक जगत। तो जगत के पश्चात क्या था? देवता। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं उसे अधिदैव कहा जाता है। तो शुरू में क्या था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता कौन है, देवता कौन है गौड़चंद्र, देवता मैं बहुत बार बताया है कृष्णदास, वेरी गुड। अच्छा और इसके पश्चात क्या था, इसके पश्चात कौन सी प्रश्न था, तीन प्रश्न और था, आदि यज्ञ जब यज्ञ का स्वामी कौन है, हाँ प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिर स्थित में मैं परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाता हूं। तो और कैसे भगवान हर जीव के शरीर में है इसका भी वर्णन हो चुका है, हर जीव के हृदय में परमेश्वर भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। और जो भगवान को, भगवान के भक्त जो भगवान को स्मरण करके शरीर त्यागते हैं उसका हाल कैसा होता है, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम जप प्रयाति समद्भावम जाति नस्तत्र संशय। जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान का स्वभाव का मतलब क्या होता है, भगवान का स्वभाव का मतलब सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान का स्वभाव जो भगवान को याद करके भगवान को स्मरण करके शरीर त्यागते हैं उसका गति कैसी होती है, वो भगवान का स्वभाव प्राप्त होते हैं, मतलब वो भी सच्चिदानंद बन जाता है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास चले जाते हैं और वो भी भगवान का स्वभाव प्राप्त होते हैं। और अंत में भगवान कह रहे हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। कोई संदेह है, कोई शक है, ठीक अगर है तो भगवान कह रहे हैं मत करो, रंच मात्र भी संदेह मत करो। इसके पश्चात भगवान फिर से कह रहे हैं शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कैन आई, लेट मी गिव द क्लास इन हिंदी। I said, let me just carry on in Hindi. I'll speak to you later. So, हाँ तो भगवान कहते हैं कि जिस जिस भाव लेकर शरीर त्यागते हैं उस भाव में उसका प्राप्त उसके पश्चात उसका शरीर प्राप्त होता है। तो मतलब भगवान क्या होता है, जैसे जैसे भाव लेकर, जैसे चिंतन लेकर शरीर त्यागोगे वैसे ही स्थिति होगा। जैसे कोई अगर भगवान को, जैसे भगवान बनाया बताया कि उनको चिंतन करते हुए अगर हम शरीर त्यागते हैं तो हम कैसे शरीर प्राप्त होंगे, सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होंगे। जो देवताओं को स्मरण करते हुए शरीर त्यागोगे उसका क्या होगा, देवताओं को प्राप्ति होगा। जो जानवर को सोचते हुए शरीर त्यागेंगे उसका क्या होगा, जानवर का शरीर मिलेगा। जो भूत प्रेत के चिंतन करते हुए शरीर त्यागेंगे उसका क्या होगा, भूत प्रेत का शरीर प्राप्त होगा। तो अब ये बीइंग वेरी केयरफुल, कौन सी भाव लेके शरीर त्यागोगे इसका इसकी बारे में, इस विषय में तुम बहुत सावधान न हो जाओ। और चिंतन कैसा होगा, जहां आसक्ति है वैसा ही चिंतन है ना, जहां आसक्ति है। मृत्यु के समय अंतिम काल में अंतिम चिंतन क्या होगा, अंतिम चिंतन होगा जब हम जैसे भाव, जैसे हमारा भावना है वैसा ही चिंतन होगा, जहां हमारा आसक्ति है वैसा ही चिंतन होगा, है ना। को आजकल हम देखते हैं बहुत सारे आदमी अपना कुत्ता के प्रति बहुत आसक्ति रखते हैं, कुत्ता के प्रति उतना इतना आसक्ति है कि वो सुबह से शाम तक वो कुत्ता के बारे में ही सोचते हैं। तो कुत्ता के बारे में अगर इतना आसक्ति हो जाएगा तो मृत्यु के समय किसका चिंतन होगा, और ऐसे कुत्ता का चिंतन करते हुए शरीर त्यागते हैं तो क्या होगा, कुत्ता का शरीर मिलेगा। इसलिए बहुत सोच संभल कर चलना चाहिए। चिंतन आसक्ति किसके प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए। इसलिए ही भक्ति योग का अनुशीलन, साधन भक्ति का, साधन भक्ति करना चाहिए, साधन भक्ति साधन करना चाहिए। अच्छा, इसके पश्चात भगवान फिर देखिए कह रहे हैं, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, हाँ, पढ़ाई करना, हाँ, अच्छा, पढ़ाई करते हुए भी भगवान को चिंतन करना चाहिए, है ना। कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान को चिंतन करना चाहिए। मेरे ये सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ साथ साथी युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन का पेशा क्या था, युद्ध करना ही अर्जुन का वृत्ति था, वृत्ति। तुम अगर क्षत्रिय हो, आजकल तो क्षत्रिय नहीं है, तो अगर क्षत्रिय होता तो लड़ाई करना ही कर्तव्य होता है। आजकल लड़ाई करोगे तो पुलिस आकर पकड़ के ले जाएगा, बल्कि क्षत्रिय लड़ाई करके अपना जान दे देता था लड़ाई करने के लिए, ऐसे तैयार था। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, वेद पाठ, शास्त्र अध्ययन। वैश्य का कर्तव्य क्या है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और शूद्र का क्या काम है, सेवा। तो अब तुम विचार करो तुम कौन हो, हाँ, तो उसके अनुसार अपना कर्तव्य संपादन करना और वो कार्य करते करते समय भी भगवान को चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो जो भगवान को ध्यान करते हैं वो अवश्य ही भगवान को प्राप्त होंगे। तो सारे प्रश्न का जवाब मिल गए हैं। फिर से कितना प्रश्न था? आठ। आठ प्रश्न कौन कौन था? ओके, किसको पहले का किसको पता है? ओके, तुम बताओ ब्रह्म क्या है, इसके बाद आत्मा क्या है, इसके बाद सकाम कर्म क्या है, इसके बाद भौतिक जगत क्या है, वेरी गुड, इसके बाद देवता कौन है, और इसके बाद हाँ यज्ञ का स्वामी कौन है, वेरी गुड, इसके बाद एक बताओ, तुम बताओ शरीर में कौन, हाँ यज्ञ का स्वामी कौन है, परमेश्वर भगवान, और भगवान शरीर में कैसे रहते हैं, परमात्मा के रूप में। और अंतिम में अंतिम प्रश्न क्या था? हाँ वेरी गुड, मृत्यु के समय जो भगवान को स्मरण करके याद करके शरीर त्यागते हैं उसका गति क्या होता है। तो ये आठ का जवाब मिल गए हैं, सबको मिल गए हैं, न किसी को बाकी रहेगी। किसको नहीं मिला है बताओ, हाथ उठा, किसको मिल गया है हाथ उठा, मैं पूछूंगा। ओके वेरी गुड, तो बताओ आत्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, सॉरी, वेरी गुड, अविनाशी जीव है ब्रह्म, और आत्मा क्या है, नहीं जीव का स्वभाव, जीव का जो स्वभाव है उसे अध्यात्म कहा जाता है। अच्छा सकाम कर्म क्या है, कृष्णदास सकाम कर्म क्या है, किसको याद है? ओके शंकर,
शरीर को धारण करने के बाद जो कर्म
करते हैं, हाँ वेरी गुड, शरीर के द्वारा हाँ भौतिक गतिविधियां का वो सकाम कर्म का। जगत क्या है, वेरी गुड, जो निरंतर परिवर्तन, ये है भौतिक जगत। और देवता कौन है, भगवान की सेवक, वेरी गुड, ओके, ना कि देवता भगवान है, नहीं बहुत अच्छा, ओके और आदि यज्ञ क्या है, यज्ञ के स्वामी कौन है, भगवान है, वो कहां रहते हैं शरीर में, जीव के साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। और जो भगवान को याद करके शरीर छोड़ता है उसका क्या होता है, वेरी गुड, ये सब समझ गए हो, प्रश्न का जवाब मिल गया, थैंक यू, हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे।